जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरिनाम संकीर्तन की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 26 श्लोक संख्या 9। तत्र निर्भिन्न गात्राणां चित्रवाजयशिली मुखे विप्लवो भुद्दुःखितानां दुस्सह करुणात्मनां तत्र निर्भिन्न गात्राणां चित्रवाजयशिली मुखे विप्लवो भूदुःखितानां दुस्सह करुणात्मनां तत्र निर्भिन्न गात्राणां चित्रवाजयशिली मुखे विप्लवो भूदुःखितानां दुस्सह करुणात्मनां। तत्र निर्भिन्न करुणा तत्र निर्भिन्न गात्राणा चित्रवाजयशिली मुखे विप्लवो भुदुःखितानां करुणात्मनां तत्र निर्भिन्न गात्राणां चित्रवाजयशिली मुखे विप्लवो भुदुःखितानां दुस्सह करुणात्मनां। माताएं शब्दशानुवाद भाषांतर और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की तत्र वहा निर्भिन्न भेद कर गात्राणाम शरीरों वाले चित्रवाजे तरह तरह के पंखों वाले शिली मुख हैं तीरों द्वारा विप्लव विनाश संहार अभूत हुआ दुखिता नाम अत्यंत दुखितों का दुस्सह असह्य करुणात्मनाम अत्यंत दयालु पुरुषों का। जब राजा पुरंजन इस प्रकार आखेट करने लगा तो तीक्ष्ण बाणों से भीत कर जंगल में अनेक पशु अत्याधिक पीड़ा से अपना प्राण त्यागने लगे। राजा के इन विनाशकारी निर्दयता पूर्ण कार्य को देखकर दयालु पुरुष अत्यंत खिन्न हो गए। इस प्रकार के दयालु पुरुष यह सारा वध देखकर सहन नहीं कर सके। तात्पर्य, जब आसुरी लोग पशुओं का वध करते हैं तो देवता या भगवान के भक्त इस वध से अत्यंत आहत होते हैं। इस आधुनिक युग की आसुरी सभ्यताओं में विश्व भर में अनेक प्रकार की वधशालाएं कसाईघर चालू हैं, वधशालाएं। धूर्त स्वामी तथा योगी मूर्ख लोगों को मांस खाने तथा पशु का वध करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं और उसी के साथ साथ वे अपना तथाकथित ध्यान एवं योग भी चालू रखते हैं। ये सारे कार्य अत्यंत जघन्य हैं और कोई भी दयालु व्यक्ति तथा भगवान का भक्त ऐसा दृश्य देखकर अत्यंत अप्रसन्न होता है। आखेट की क्रिया भी एक भिन्न प्रकार से चल रही है, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं। स्त्रियों का आखेट विभिन्न प्रकार की शराबें पीना, नशे में रहना, पशुओं का वध तथा मैथुन सुख, ये सब आधुनिक सभ्यता के आधार हैं। वैष्णवजन संसार की ऐसी दशा देखकर अत्यंत अप्रसन्न रहते हैं, इसलिए वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार में व्रस्त है। जंगल में पशुओं के शिकार तथा वध, कसाई घरों में पशुओं का सामायिक वध तथा वेश्यालय में जो क्लबों और संस्थानों के विभिन्न नामों के अंतर्गत चलाए जाते हैं और तरुणियों का शोषण, इन सब को देखकर भक्तजन दुखी होते हैं। यज्ञ में पशुओं के वध के प्रति अत्यंत दयालु होने के कारण नारद ने राजा प्रचिन परिषद को उपदेश देना प्रारंभ किया। इन उपदेशों में उन्होंने बताया कि मेरे जैसे भक्त मानव समाज में प्रचलित इस प्रकार के वध से अत्यंत दुखी है। इस प्रकार के वध से न केवल संत पुरुष दुखी होते हैं, वरन भगवान भी दुखी होते हैं और बुद्ध के अवतार में रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए जयदेव गोस्वामी गाते हैं, सदय हृदय दर्शित पशु घातम, मात्र पशुओं में पशुओं की हत्या रोकने के लिए भगवान बुद्ध दयावश प्रकट हुए। कुछ दूर तो यह मत व्यक्त करते हैं कि पशुओं के आत्मा नहीं होता अथवा वे जड़ हैं। इस प्रकार वे अपना औचित्य स्थापन करते हैं कि पशु की हत्या में कोई पाप नहीं होता। वस्तुतः तो पशु जड़ ही है, अपितु उनका वध करने वालों का हृदय जड़ होता है, अतः उन्हें कोई तर्क या दर्शन नहीं भाता। वे कसाई घरों को चालू रखते हैं और जंगल में पशु का वध करते रहते हैं। निष्कर्षतः जो व्यक्ति नारद जैसे साधु पुरुष एवं उनकी परंपरा के उपदेशों की परवाह नहीं करता, वह निश्चय ही नष्ट प्रज्ञ की कोटि में पहुंचकर नरक को जाता है। श्री प्रभुपाद की ओम। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का प्रातः समय श्रीमद् भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो मैं सर्वप्रथम सभी भक्तों से आशीर्वाद चाहता हूँ कि ताकि मैं कुछ इस विषय के बारे में बोल सकूँ मेरे शुद्धिकरण के लिए, विशेषतः महावीर प्रभु जी, गौरलीला प्रभु जी, रामनीताय प्रभु जी, गोपाल चंद्र प्रभु, इनसे मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे ऊपर आशीर्वाद बरसाए ताकि इस विषय के बारे में मैं कुछ बोल सकूँ। तो आज का अभी जो पुरंजन उपाख्यान जो चल रहा है, तो पुरंजन का जो तुलना इस सिटी से, मतलब वो इसका जो शरीर एक शहर और वो जो उसकी पत्नी उसकी बुद्धि, उनसे उनकी तुलना की गई है। और पुरंजन शिकार के लिए निकलता है अपने इंद्रियों के साथ, उसमें प्राणवायु भी शामिल है, उसका ये जो रथ है, और अलग अलग जगह जाके वो अभी शिकार करेगा, मतलब इंद्रिय तृप्ति के साधन ढूंढेगा और जितना इंद्रिय तृप्ति कर पाए उतना भी वो करेगा। तो इस तरह से ये पुरंजन का उपाख्यान है। तो ये बहुत सुंदर ये जो श्रृंखला चल रही है, ये जो अध्याय चल रहा है, तो इसमें जो प्रभुपाद के इतने सुंदर जो तात्पर्य है, तो हमें बहुत ही एक विशेष दिशा में लेके जाते हैं, जो भगवान के चरणों की तरफ जाता है। हर एक तात्पर्य में वैराग्य के बारे में प्रभुपाद का प्रभुपाद जिक्र करते ही है। तो इसके लिए जो तो हमें इस अध्याय का हम यदि थोड़ा एनालाइज करें, थोड़ा विश्लेषण करें, थोड़ा गहराई से यदि देखें, तो ये जो पुरंजन का इस संसार की तरफ देखने का नजरिया एक भोग वृत्ति का है। तो संसार की तरफ देखने के दो नजरिए होते हैं। तो एक है ये मेरी भोग की जगह है कि इस जगह में मैं कितना भोग कर सकूं, जितना संभव है उतना मैं भोग करूं, ये एक नजरिया है। और एक नजरिया है कि ये जो जगह है, ये जगह इज द प्लेस ऑफ रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मतलब हिंदी में, हाँ, ये जो सुधार, सुधार की जगह है। जब हम घर में हमारे नसीब में जाते हैं तो हम देखते हैं कि किशोर सुधारालय, मतलब जो डकैत रहते हैं और जो चोर रहते हैं, तो उनको एक सुधारालय रहता है, तो उनको सुधारने के लिए वो रहता है। तो भले वो उधर जाके और बिगड़ते हैं, वो बात अलग है, किंतु ये जो जगह है सुधारालय है, ये सुधरने की जगह है। तो चैतन्य चरण प्रभु भी इसमें बहुत सुंदर एक आर्टिकल उन्होंने लिखा है कि होटल और हॉस्पिटल टेक योर पिक। इस संसार की तरफ आप होटल की तरफ देखो या अस्पताल की तरफ देखो, ये आपका निर्णय है। तो इस संसार की तरफ हॉस्पिटल होटल की तरह देखना, मतलब होटल में जाके इंसान क्या करता है, बहुत भोग करता है, बहुत आनंद लेता है, कभी कभी वो बहुत सारा व्यंजन होटल में ले लेता है और बाद में देखते हैं कि उसके पास उतने पैसे है ही नहीं, तो होटल का मालक उसको एक बहुत विशेष ट्रीटमेंट देता है। वो उसको फिर उसके किचन में लेके जाके उनसे क्या करता है, फिर पूरा बर्तन धुलवाता है। तो इसी तरह से इस संसार में जो दुख भोगत रहे, तो उन्होंने बहुत भोग लिया है, पर उनके पास वो भरने के लिए, बिल भरने के लिए इतने पैसे नहीं थे, इसके लिए अभी वो बर्तन मांजने का उनको शिक्षा दिया गया है। तो इसके लिए जो भौतिक संसार में जो दुख भुगत रहे, तो उन्होंने होटल में बहुत भोग तो कर लिया, परंतु उनके पाप कार्य अभी वो उनको उनका भुगतान करना पड़ रहा है। तो ये एक नजरिया है संसार की तरफ देखने का, जो पुरंजन का नजरिया, पुरंजन इस नजरिए से इस पूरे संसार में देख रहे हैं। दूसरा नजरिया है कि अस्पताल। तो अस्पताल ऐसी चीज है कि वहां पे इंसान को सुधारा जाता है, वहां पे फिर डॉक्टर रहते हैं, वैद्य रहते हैं। तो कभी कभी वैद्य हमें बहुत बड़ा इंजेक्शन भी लगाते हैं, तो वो इंजेक्शन थोड़ा हमें सहन करना पड़ेगा। वो कोसना नहीं है डॉक्टर को कि क्या ये मुझे इंजेक्शन लगा रहे। तो डॉक्टर मतलब गुरुजन है, तो कभी कभी गुरुजनों का सराहना भी मिलता है, कभी कभी डांट भी खाना पड़ता है। जब डांट खाना पड़ता है तो ऐसा मानना चाहिए कि हमें इंजेक्शन लग रहा है, तो बहुत ही प्रसन्नता के साथ वो स्वीकार कर लेना चाहिए। तो फिर अस्पताल में परहेज रहता है, सब कुछ हम नहीं खा सकते, ये आयुर्वेदिक का तत्व है। वो एलोपैथी का तत्व है कि सब कुछ खाओ। एलोपैथी डॉक्टर को पूछे कि हम क्या खाएं क्या नहीं, बोले सब कुछ खाओ और ये गोली खाओ और क्या मत खाओ, हमारा दिमाग मत खाओ। पर ये आयुर्वेदिक के हिसाब से थोड़ा परहेज रहता है। तो परहेज मतलब जो हम बोलते हैं ना, वो बिना मसाले वाली खिचड़ी या भाकरी या भोपले की सब्जी। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा जीवन अभी व्यर्थ हो गया, सारे लोग पनीर की सब्जी खा रहे और जलेबी खा रहे और मैं क्या भोपले की सब्जी और भाकरी खा रहा हूं। तो हमें जानना है कि एक दिन हम ठीक होंगे और सब कुछ अच्छे से खा सकेंगे, ये हमें जानना है। तो फिर ऐसा हुआ तो फिर वो परहेज चालू रखने का इम्पेटस मिलता है, वो प्रेरणा मिलती रहती कि भविष्य में मैं ठीक होने वाला हूं, और जो कुछ करना है वो आध्यात्मिक धाम में भगवान के साथ सब कुछ आनंद हम भगवान को केंद्र में रख के होने वाला है। तो इस ये भाव रखते हुए वो परहेज चालू रखना है, परहेज छोड़ना नहीं है। तो परहेज मतलब क्या है? फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल, नो मीटिंग, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। तो ये है परहेज, क्योंकि ये बीमारी से हमें ठीक करते हैं। फिर अस्पताल में क्या क्या रहता है? डॉक्टर रहते हैं, नर्स रहते हैं, इंजेक्शन लगा रहता है, कभी सलाइन में लगा रहता है, और वो अस्पताल में वो पेशेंट को एक अलग से वस्त्र दिए जाते हैं, तो जिससे वो पेशेंट है ये पहचान में आता है कि पेशेंट और आम आदमी में डिस्टिंग्विश करने में वो मदद मिलती है। तो वैसे ही हमें भी ये पेशेंट का ड्रेस दिया गया है, तो कोई गेरवे वस्त्र में, कोई पीले वस्त्र में, कोई सफेद वस्त्र में, तो ये ड्रेस है। तो इस संसार की तरफ देखने का ये नजरिया, अस्पताल, ये संसार एक अस्पताल, ये सुधरने की जगह है, ये भोग करने की जगह नहीं है, ये सुधरने की जगह है। तो ये मन में विचार रखते रखते हमने आगे बढ़ते रहना है। तो इसके लिए गजेंद्र की क्या गलती हुई? गजेंद्र इस संसार को उसने होटल की तरफ देखा, मतलब ये संसार मेरी भोग की चीज है। तो जब गजेंद्र गया वो पानी पीने के लिए, तो वो आराम से पानी पी के आ सकता था रिटर्न, तो पर उनकी गलती क्या हुई? उन्होंने अपने पत्नी बच्चे के ऊपर छींटे उड़ाना चालू किया, आनंद उठाना चालू किया, और फिर वो मगरमच्छ ने क्या किया? उसको पकड़ लिया। तो इसके लिए पानी में रह के मगरमच्छ से वैर करना बहुत धोखादायक है। तो मतलब गजेंद्र आराम से पानी पी के आ सकता था, तो चुपचाप से उन्होंने उधर क्रीड़ा करना चालू की। इसके लिए वो मगरमच्छ बहुत ही एजिटेट, बहुत ही क्रुद्ध हो गए, और मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया। तो इसीलिए इस संसार में एक दूसरे के ऊपर छींटे उड़ाने की ये जगह नहीं है। ये संसार जो है एक दूसरे के ऊपर ज्यादा छींटे उड़ाना बहुत धोखादायक रह सकता है, क्योंकि मगरमच्छ की जगह है ये जो संसार। हमने दुश्मन के इलाके में जाके लड़ाई कर रहे हैं, जैसे रहते ना होम ग्राउंड में मैच जीतना बहुत आसान रहता है। पर अभी हम जो है वो शत्रु के पक्ष में है, तो शत्रु ज्यादा हावी है। तो गजेंद्र के उपाख्यान में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बहुत सुंदर सुंदर वर्णन करते हैं कि हमने पानी में रह के मगरमच्छ से वैर लिया है, तो इसके लिए क्या करना है हमें कि वर्णाश्रम धर्म में स्थित रहते रहते हैं भक्ति पालन करना है। तो इस तरह से ये जब दोनों होगा तब हम इस मगरमच्छ की चंगुल से छूट सकते हैं। तो वर्णाश्रम मतलब क्या बोलते हैं? माम अनुस्मर युद्ध च। तो भगवान अर्जुन को बोले कि केवल युद्ध नहीं बोले और केवल माम अनुस्मर नहीं बोले। तो माम अनुस्मर यह है भागवत धर्म, और युद्ध है ये वर्णाश्रम धर्म। तो ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो ये मगरमच्छ की चंगुल से हम दूर हो सकते। तो वर्णाश्रम धर्म क्या है? तो भगवान गीता में बहुत सुंदर बताते हैं कि स्वकर्मणातम अभ्यर्च सिद्धिन विंदंती मानवा। तो भगवान बोलते हैं कि इंसान जो कुछ जिस स्तर पे हो, जो शूद्र हो तो शूद्र हो, जो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय है, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है, जिस किसी स्थिति में आप हो उस स्थिति में रह के भगवान की सेवा करना, यह है यशस्वी जीवन का रहस्य। वर्ण में और आश्रम में जिस जही कहां स्थित हो उसी स्थिति में रह के भगवान की आराधना करना। यत्त प्रवृत्तिर्भूतानि येन सर्वम इदम जगत स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धि विंदंती मानवा। तो यह है वर्णाश्रम का व्याख्या भगवान करते हैं कि इस तरह से ये एक ही तरीका है सिद्धि विंदंती मानवा। यदि मानव समाज को यदि यश प्राप्त करने, तो ये एक ही तरीका है कि कौन से भी स्थिति में आप हो उस स्थिति में भगवान की आप सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो पुरंजन का जो नजरिया है संसार की तरफ देखने का, तो वो भोग का नजरिया है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि और दो तरीके हैं जीवन की तरफ देखने के, दो नजरिए हैं कि आइसक्रीम, कुछ लोग देखते हैं जीवन को एक आइसक्रीम की तरह, कि पिघलने से पहले भोग कर लो, क्योंकि आइसक्रीम जनरली पिघलने से पहले खा लेते हैं, मतलब जीवन अंत होने से पहले जितना भोग करना है उतना भोग करो। परंतु भक्तों का नजरिया जीवन की तरफ है, एक दिए की तरफ। तो दिया क्या है, सॉरी मोमबत्ती, मोमबत्ती पिघलने से पहले प्रकाशित करो। तो सबको पिघलने से पहले ये जो प्रकाश है भक्ति ज्ञान का जो प्रकाश, उससे प्रकाशित करो। तो इसके लिए हमारी जो संस्कृति है वो दिए लगाने की संस्कृति। परंतु आधुनिक संस्कृति जो बर्थडे के दिन क्या करते हैं, वो दिए बुझा देते हैं। तो पाश्चात्य संस्कृति दिए बुझा देने वाली संस्कृति, सब अंधेरा करो और अंधकार में जो कुछ आनंद लेना है वो आनंद ले लो। तो हमारी संस्कृति ये दिए लगाने की संस्कृति, मतलब एक दूसरे को प्रकाशित करने की। नहीं तो ऐसा होता है कि अभी कभी कभी बहुत बार दिया रहता है और दिए के नीचे अंधेरा रहता है, तो दूसरों को प्रकाशित करते करते हम खुद ने भी प्रकाश लेना है, किंतु दिए के नीचे दिए का प्रकाश नहीं जाता, तो क्या करना चाहिए? तो दो दिए जब बाजू रखते हैं तो एक दिया दूसरे दिए के नीचे प्रकाश देता और ये दिया ये नीचे दिए के नीचे प्रकाश, मतलब ये जो भक्तों का जो संघ है, तो प्रचार करते करते ये भक्तों का संघ भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए संसार की तरफ, ये तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं कि यशस्वी जीवन का रहस्य, जैसे नारद मुनि के उपदेशों के अनुरूप हम यदि जीवन यापन करेंगे तो ही जीवन यशस्वी होगा। तो अंत में प्रभुपाद तात्पर्य बहुत सुंदर लिखते हैं, केवल नारद मुनि जैसे महान भक्त जो हैं उनके उपदेशों का यदि हम अनुसरण करेंगे तो ही हम जीवन में यशस्वी हो सकते हैं और तभी हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती। तो यशस्वी जीवन की लोगों की मनगढ़ंत धारणा रहती है कि मैं ये करूंगा तो यशस्वी रहूंगा, मैं बहुत सुंदर कोरेगांव पार्क में, मैं बहुत सुंदर मेरा बंगला होगा, उसके नीचे मेरी मर्सिडीज कार होगी तो मैं जीवन में यशस्वी होगा, मैं फॉरेन कंट्रीज में जाके आऊंगा तो मेरा जीवन यशस्वी है। तो ऐसा लोगों का यशस्वी जीवन का अपना अपना धारणा रहता है जो भगवान की माया शक्ति से आते हैं। तो इसके लिए दक्ष प्रजापति वो हमसे को ये प्रार्थना में बहुत सुंदर प्रार्थना करते भगवान को कि बोलते कि ये इस दुनिया की सारी जो गलत धारणा है, जीवन जीने की सारी गलत धारणा, गलत धारणाओं या सारी गलत फिलोसॉफीज हो, ये भगवान की माया शक्ति से आती है और पूरा संसार इस जीने की गलत धारणाओं से और इस माया शक्ति के कारण प्रभावित है। तो मैं नतमस्तक होता हूँ वो माया शक्ति के सामने, मतलब पूरे संसार को इस तरह से वो माया शक्ति व्यथित करती है, विचलित करती है, जीवन जीने की कुछ गलत गलत धारणाएं सिखाती है, तो कितना शक्तिशाली रहेगी भगवान की माया शक्ति। तो इसके लिए ये माया शक्ति के कारण लोगों की बहुत गलत गलत धारणा रहती है जीवन जीने की। आजकल एक यशस्वी पुरुष, बाहर के जगत में यशस्वी पुरुष की व्याख्या क्या है? इफ ही हैज अ इंडियन वाइफ, अमेरिकन सैलरी, ब्रिटिश हाउस एंड चाइनीज फूड, देन ही इज सक्सेसफुल। सक्सेसफुल डेफिनेशन, मतलब सक्सेस, यशस्वी व्यक्ति की व्याख्या है, भारतीय पत्नी हो, अमेरिकन सैलरी हो, चाइनीज फूड हो और ब्रिटिश हाउस, ये है यशस्वी पुरुष। और अयशस्वी पुरुष कब है? जब उसको इंडियन सैलरी हो, अमेरिकन पत्नी हो, ब्रिटिश फूड हो और चाइनीज हाउस। तो ये है अयशस्वी पुरुष की व्याख्या। परंतु ये क्या व्याख्या, ये व्याख्या क्या मायने रखती है? जीवन जीने की यशस्वी व्याख्या सीखिए नारद मुनि से, नारद मुनि के जो उपदेश चल रहे हैं ये पुरंजन उपाख्यान, ये यदि हम आत्मसात करेंगे तो ही जीवन यशस्वी होने वाला है। तो इसके लिए तो जीवन की तरफ देखने का नजरिया जो होटल जो है वो है कैकेयी का नजरिया। तो कैकेयी जो कैकेयी जो सोची कि ये अयोध्या के राजगद्दी पे मेरा बेटा बैठना चाहिए, प्रभु श्री रामचंद्र भोग नहीं करेंगे, मेरा बेटा भरत भोग करेगा। तो यह है नजरिया जीवन की तरफ देखने का कि मेरा बेटा भोग करना चाहिए, भगवान भोग नहीं करना चाहिए, परम भोक्ता भगवान नहीं है, राम नहीं है, मेरा बेटा ही भोक्ता है। तो इस तरह से कई कई का ये नजरिया है जीवन की तरफ देखने का। तो कई कई तो प्रभु श्री रामचंद्र से बहुत प्रेम करती थी, जितना कौशल्या प्रेम करती थी उतना ही कई कई करती थी, किंतु एक दुस्संग मतलब मंथरा के संग के कारण जो वो दूषित हो गई। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जीवन की तरफ देखने का नजरिया संग के कारण बदलते रहता है। तो इंसान का जीवन की तरफ देखने का नजरिया बदलते जाता है जिस वो संघ में वो रह रहा है, वो संघ का नजरिया वो व्यक्ति के नजरिया बन जाता है। तो इसके लिए भक्तों का संग जितना लेना चाहिए उतना हम ले सकते हैं, लेना चाहिए। भक्तों का जीवन की तरफ देखने का नजरिया है कि ये संसार है भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो ये यदि हम भक्तों के जितना संग करेंगे उतना हमारे जो जीवन का नजरिया बदलता जाएगा। तो इसके लिए ये जो कई कई है इस तरह का नजरिया रखती है, जो कि मंथरा के कारण बहुत ही दूषित हो गई। तो हमें बहुत ही सतर्कता पूर्वक देखना है कि किन भक्तों के साथ मतलब कैसे हम संग कर रहे हैं। तो इसके लिए जो ये और एक योजना है कि ये संसार जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए, मेरी प्रसन्नता नहीं, मेरी प्रसन्नता दुय्यम है, सबसे प्रथम भगवान की प्रसन्नता। तो हम पूरा रामायण यदि देखेंगे तो रामायण में बहुत सारे किरदार हैं जो अपने अपने बर्ताव से दिखा देते हैं कि कैसा केवल प्रभु श्री रामचंद्र ही परम भोक्ता है, उनकी प्रसन्नता है। जब वो प्रसन्न होंगे तो अब हम अपने आप प्रसन्न होंगे। जैसा कि यथा तोरोर मूल निश्चय चनेन त्यत्पन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच इथेन्द्रियाणम तथैव सर्वार्हणम अच्युत इज्जय। जब भगवान राम संतुष्ट होंगे तो उनकी संतुष्टता में ही हमारी संतुष्टि है। तो प्रभु श्री रामचंद्र स्वयं अपने उदाहरण से दिखा देते हैं कि एक बार ऐसा होता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जब दशरथ का दरबार रहता है तो दशरथ के दरबार में विश्वामित्र मुनि आते हैं और बोलते हैं कि मैं जब यज्ञ करता हूँ, जो मेरा यजन याजन जब चलता है, तो ये सारे आसुरगण मुझे बहुत परेशान करते हैं, तो अभी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे आपके जो पुत्र दीजिए ताकि वो मुझे मेरा हाथ बटोरेंगे, मेरी सहायता करेंगे इस यज्ञ का समापन करने के लिए। तो दशरथ महाराज तो उनको असंभव रहता है क्योंकि उनका प्रभु श्री रामचंद्र के प्रति बहुत लगाव रहता है। तो परंतु प्रभु श्री रामचंद्र को मतलब तब वो बोलते हैं कि नहीं, आप जो कुछ मांगना है वो मुझसे मांगो, मैं आपको संपत्ति दूंगा, मैं आपको राज्य दूंगा। तभी भी विश्वामित्र मुनि बोलते कि नहीं, मुझे आपके बेटे ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो विश्वामित्र तभी भी अकड़ते रहते हैं, बोलते कि नहीं दूंगा। तो विश्वामित्र मुनि बहुत जब क्रुद्ध होते तब दशरथ महाराज डर जाते और अपने जो राम लक्ष्मण को बुलाते हैं और बोलते हैं कि देखो अभी आपको जाना है विश्वामित्र मुनि का सहायता करने के लिए, उनकी यज्ञ में सहायता करने के लिए, उनके साथ आपको अभी वन में जाना है। तो उस वक्त प्रभु श्री रामचंद्र जरा भी पूछते नहीं, जरा भी सोचते भी नहीं, तुरंत वो राजी होते हैं। मतलब कितना हम देख सकते हैं कि कितना एक व्यक्ति में वैराग्य हो सकता। श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, दिताय गौरचंद्र भगवान की, शील प्रभुपाद की, तो प्रभु श्री रामचंद्र जरा भी सोचे नहीं कि क्या होगा मेरा। अभी प्रभु श्री रामचंद्र जो इतने बड़े राज प्रसाद में रह रहे, तो उनके कई सारे सेवक थे, दशरथ महाराज ने उनके लिए कई सारे सेवक नियुक्त किए थे। तो अभी ऐसा जीवन और तुरंत दूसरे दिन ऐसा वनवास का जीवन विश्वामित्र मुनि की सेवा के लिए, तो जरा भी सोचे नहीं कि मेरा क्या होगा, कि मुझे ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिलेगा कि नहीं, मेरे लिए बेडिंग अच्छा रहेगा या नहीं, तो मेरे वो आइटम क्या रहेंगे, मेनू क्या रहेगा, वो जरा भी सोचा नहीं, तो तुरंत निकल पड़े। तो इसके लिए प्रभु श्री रामचंद्र स्वयं के उदाहरण से दिखा देते हैं कि कैसा गुरु की संतुष्टि ये सर्वप्रथम है। शिष्य के जीवन में गुरु की संतुष्टि के ऊपर कुछ है ही नहीं, गुरु को संतुष्ट तो सब कुछ संतुष्ट। तो इसके लिए वो प्रभु श्री रामचंद्र अपने उदाहरण से दिखा देते हैं। तो और उसके बाद जब जब उनका राज्याभिषेक होना होता है तो एक दिन पहले जो कई कई कोप भवन में जाती है, तो तब हम देख सकते हैं कि कितना भारतीय संस्कृति समृद्ध थी। तो कोप व्यक्त करने के लिए अलग भवन, मतलब हम सोच सकते कि तब ऐसा जनरल ये संस्कृति था, तो जब कभी भी महिलाएं क्रुद्ध होती थी वो अलग एक भवन रहता था उनके लिए कोप व्यक्त करने के लिए। तो कई कई कोप भवन में गई और उन्होंने व्यक्त किया कि अभी कल राम का राज्याभिषेक है, परंतु मेरा निवेदन है कि अभी राम नहीं, राम 14 साल वनवास में जाएगा और मेरा बेटा भरत गद्दी पे बैठेगा। और जब दशरथ को ये जब समझा तो दशरथ बहुत ही व्यथित हो गए और फिर उन्होंने राम को दूसरे दिन ऐसा बताया कि ऐसा ऐसा हो चुका है। तो मैंने कैकेयी को ऐसे इतिहास में ऐसे एक वचन दिया था कि दो वर आप कभी भी भविष्य में मांगोगी तो मैं पूरा करूंगा, तो अभी आपको कल वनवास जाना है 14 साल। तो उस वक्त भी राम जरा भी पूछे नहीं, आ रहे ऐसा कैसे, मतलब प्रभु श्री रामचंद्र का एक ही मकसद था, उनको गद्दी पे बैठने की कुछ अभिलाषा ही नहीं थी, केवल गुरु की सेवा, केवल पिता की सेवा। तो इसके वजह से हम देख सकते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र का वैराग्य क्या है। तो भगवान में षड ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यशस्व श्रेय ज्ञानम वैराग्यम चैव शरणम इति भगंगणा। तो इसमें एक वैराग्य, ये वैराग्य का ऐश्वर्य है। तो भगवान का वैराग्य एक समुन्द्र की तरह है, तो हमारा वैराग्य एक बूंद की तरह है। तो भगवान का कितना वैराग्य, क्या अभी 14 साल वो अभी वनवास में जाना है, मतलब कहा वो अयोध्या का सिंहासन और कहा वो वनवास, परंतु जरा भी सोचे नहीं, तुरंत निकल पड़े। तो इसकी वजह से प्रभु श्री रामचंद्र की जो कीर्ति है आज भी गाई जाती है। तो फिर उसके बाद लक्ष्मण भी, तो लक्ष्मण को जब समझा कि प्रभु श्री रामचंद्र को वनवास जाना है, तो आजकल का यदि कोई नौजवान रहता और उसको यदि समझता कि अभी मेरे भाई को बेदखल किया गया है, अभी वो पिताजी के संपत्ति का हिस्सेदार नहीं रहेगा, तो आजकल का जो नौजवान रहता तो पहले वो पार्टी मनाता कि चलो मेरे रास्ते का काटा बिना प्रयास के दूर हो गया तो ऐसा है। परंतु लक्ष्मण ने क्या सोचे, प्रभु श्री रामचंद्र अभी वनवास जा रहे तो मैं भला कैसे इस अयोध्या का भोग कर सकता हूं, तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा। तो इस तरह से लक्ष्मण ने 14 साल वो लक्ष्मण सोए ही नहीं, प्रभु श्री रामचंद्र की कुटिया के बाहर वो राम की रक्षा करते हैं। तो इसके लिए, और लक्ष्मण ने कभी सीता माता की तरफ देखा भी नहीं, उनके केवल चरणों में देखा, चरणों के ऊपर भी नहीं देखा, मतलब कितना कोई भगवान की सेवा के लिए लालयित रहता है, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो फिर भरत भी, अपने जो सुंदर भरत का जो चरित्र है उससे भी हमें समझ सकता है कि कैसा भरत का यह भाव है कि केवल प्रभु श्री रामचंद्र भोगता है और मैं सेवक हूं। तो भरत भी जब समझा उनको कि ऐसे तरह से कैकेयी ने भेज दिया है प्रभु श्री रामचंद्र को 14 साल वनवास के लिए, तो भरत बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने कैकेयी का त्याग कर दिया, आज से आप मेरी मां नहीं। तो इस तरह से भरत भी अपने सुंदर चरित्र से दिखा देते हैं कि भगवान की सेवा प्रमुख होनी चाहिए। तो उसके बाद वो जब प्रभु श्री रामचंद्र से मिलने आए तो बोले कि आप वापिस चलिए, आप ही अयोध्या के गद्दी पे बैठेंगे, आप ही अयोध्या के राज करोगे। तो राम नहीं मानते, राम बोलते हैं कि नहीं, मैंने वचन दिया है। तो इस तरह से भरत उनकी पादुका लेके आते हैं और 14 साल वो पादुका के सामने पादुका से आज्ञा लेते हैं, पादुका को रिपोर्ट सादर करते हैं, मतलब ऐसा ऐसा राज्य का पूरा सब समाचार देते हैं और बोलते हैं कि क्योंकि भगवान अभी वनवास में है तो भला मैं कैसे आराम से ऐशो आराम से रह सकता। तो भरत सोचे, भरत फिर 14 साल भरत गद्दी के ऊपर नहीं सोए, उन्होंने वो घास रहता है घास के ऊपर वो सोए और जमीन पे सोए वो, और 14 साल केवल वो जो क्या बोलते हैं बार्ली कॉर्न जव गोमूत्र में भिगो के वो खाए केवल 14 साल। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भरत के वैराग्य का और उनकी मतलब भगवान की प्रसन्न करने की परिसीमा है भरत, मतलब। तो उसके बाद कई सारे अलग अलग किरदार है, जटायु है, जटायु भी इतना बूढ़ा जो पंछी था, किंतु रावण इतना शक्तिशाली था, उसको पता था कि मेरा रावण के सामने टिकाऊ नहीं लगने वाला है, तभी भी राम की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी। उसके बाद है हनुमान, जो हनुमान का तो क्या कहने, पूरा जो सुंदर कांड जो रामायण का जो भरा हुआ है हनुमान की सुंदर सुंदर लीलाओं से, जो हनुमान जब निकल पड़ते हैं, जब सीता को ढूंढना रहता है, तो हनुमान जब जो 800 मील लंबी जब छलांग लगाते हैं, तो छलांग जब लगाते हैं तो कई सारे व्यवधान आते हैं उनके रास्ते में, किंतु सारे व्यवधानों को दूर करते हुए वो अग्रसर होते रहते हैं। तो सबसे पहला व्यवधान आता है मैनका, जो मैनका राक्षसी जो समुद्र से ऊपर आती है, और मैनका राक्षसी मतलब वो सुंदर पर्वत का रूप रहता है। तो मैनका राक्षसी बोलती कि आप बहुत बड़े मिशन पे निकले हुए हो, आप थोड़ा आराम कीजिए, थोड़ा पानी पीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगी, फिर आप आगे चलते रहिए। परंतु हनुमान क्या सोचे कि नहीं, तो हनुमान केवल भगवान की सेवा, यही हनुमान का लक्ष्य था। तो वैसे हम भी देखते कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे व्यवधान आते हैं, तो माया देवी हमें बोलती है कि आओ थोड़ा बैठो, थोड़ा आराम करो, थोड़ा विश्राम करो, मैं आपकी सेवा करूंगी, फिर आगे चलता रहेगा, क्या भक्ति चलती रहेगी। तो हनुमान रुके नहीं, हनुमान चलते रहे, केवल उन्होंने उनकी प्रसन्नता के लिए उनको केवल स्पर्श किया। तो वैसे भी हम भी देखते हैं कि कभी कभी जपा करते वक्त कभी सुंदर ऐसा सोफा दिख जाता है, हम सब सोचते हैं कि वो सोफे के ऊपर थोड़ा विश्राम करेंगे, तो पर सोफे के ऊपर जो माला होती है वो बहुत विशेष होती है। जो चौपाटी में एक ऐसा ही सोफा रखा है, तो सोफे को सब जपा किलर बोलते हैं, जपा किलर, कोई भी उसके ऊपर जाके जप करते करते बैठता है उसको सोना ही है, क्योंकि उसका कुशन बहुत सॉफ्ट बना है। तो वैसे ही मैनका इस तरह से अलग अलग रूप से हमारे सामने आती है, और हमें बहुत ही क्या बोलते हैं, टेम्पटेशन मतलब प्रलोभन देती है, प्रलोभन देती कि थोड़ा बैठो, थोड़ा आराम करो। पर हनुमान के पद चिन्हों पर हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। फिर उसके बाद हनुमान के सामने सुरसा राक्षसी आती है, जो बहुत ही बड़ी बन जाती है हनुमान के, पर हनुमान भी बड़े बन जाते हैं, फिर वो और बड़ी बन जाती है, फिर हनुमान तुरंत छोटे हो जाते और उसके मुंह में जाके वापस आ जाते। तो इस तरह से सुरसा वो देखती कि हनुमान का वो नम्रता देख के वो तुरंत पिघल जाती है। फिर उसके लिए हम भी देखते हैं कि कभी कभी भक्तों में बहुत वाद होते हैं, मतलब तो एक भक्त अलग आर्ग्यूमेंट करता है, वो आर्ग्यूमेंट करता है, वो बड़ा बनता है, वो बड़ा बनता है, पर इस चीज में हम देखें कि हम यदि बहुत छोटा बन जाते हैं तुरंत सामने की पार्टी नरम हो जाती है। तो ये हनुमान के पद चिन्हों के ऊपर हम ऐसा अनुसरण कर सकते हैं। तो ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हमने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, इसका अनुभव लिया है कि कभी कभी वाद बहुत होता है, तो एकदम जब छोटा रूप हम धारण कर लेते हैं तो सामने की पार्टी एकदम नरम हो जाती है। इसके लिए हार के जीतना ये हनुमान से हम सीखते हैं, सीख सकते हैं, हार के जीतने की कला हमने अवगत करनी चाहिए। फिर उसके बाद सिम्मिका, जो हनुमान की परछाई पकड़ती है, हनुमान की जो परछाई को पकड़ती है, और परछाई मतलब हनुमान जब समुद्र से ऊपर से जा रहा होता है तो नीचे परछाई पकड़ लेती है, और हनुमान फिर उसके पेट में जाके उसका पूरा छेदन करते हैं। तो इसके लिए हम तो परछाई पकड़ना मतलब भक्तों के दुर्गुण के ऊपर ज्यादा केंद्रित होना, तो ये हम सीख सकते हैं। तो हनुमान का यदि सहारा लेंगे हम, तो हनुमान के यदि पद चिन्हों के ऊपर अनुसरण करेंगे, तो इस तरह के राक्षसों से हम चंगुल से छूट पाएंगे। फिर उसके बाद लंकिनी आती है, तो लंकिनी को हनुमान फिर उसको तमाचा मारते और लंकिनी गिर जाती है, फिर लंकिनी बोलती है कि जाओ आपको मैं आज्ञा देती हूँ। तो इस तरह से कई सारी राक्षसियां हनुमान के रास्ते में आती है, किंतु हनुमान रुकते नहीं और चलते रहते। फिर उसके बाद आखिरी में है वानर सेना, तो वानर सेना भी भगवान राम को पूरा समर्पित थी। तो वानर सेना हम देखा जाए तो कि जब सेतु बांधना था पूरी वानर सेना जुट गई, पूरे भारत में सारे वानर बिखर गए और अलग अलग पत्थर लेके आए और भगवान के लिए सेतु बनाया। तो 10 दिन में वानर सेना ने 800 मील लंबा और 100 मील चौड़ा सेतु बनाया। तो आजकल आज के जमाने के सारे इंजीनियर को इकट्ठा लाया जाए तभी भी ये काम वो 10 साल में भी नहीं पूरा कर पाएंगे। अब जो पुणे मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है, इतना छोटा सा ब्रिज बनना है उनको, 10 साल लगने वाले उसको, किंतु हम देखते कि वानर सेना भगवान को इतना समर्पित है। और इस तरह से, और जो आखिरी का जो युद्ध हुआ रामायण का जो रावण के साथ, तो रावण के जो योद्धा थे बहुत ही शक्तिशाली थे, वो बहुत ही अलग अलग योग्यता उनमें थी, अलग अलग सिद्धि थी, किंतु वानर सेना के पास क्या था, कुछ नहीं। रावण की सेना के पास अलग अलग शस्त्रास्त्र थे, वानरों के साथ केवल पत्थर थे वानरों के पास, पर केवल एक चीज उनके पास थी, भगवान राम को प्रसन्न करने की इच्छा शक्ति। वो इच्छा शक्ति के कारण पूरे रावण का उन्होंने रावण की सेना का खात्मा कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रामायण के सारे किरदार जो हैं हमें सिखा देगी कि कैसा इस संसार की तरफ देखना चाहिए। ये संसार जो है भगवान की प्रसन्नता की वस्तु है और ये एक हॉस्पिटल जैसा है, ये होटल जैसा नहीं है। तो रामायण के अनेक किरदारों से हम देख सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।